वातावरण देखी जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अब ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज का जो श्लोक लिया है तो ये पंचम स्कंद है, चतुर्थ अध्याय और आठवां श्लोक है। तो हम लिखा है, ठीक है। अतः भगवान ऋषेव देव स्ववर्ष कर्म क्षेत्रम अनुमन्यमान प्रदर्शित गुरुकुल वासो लब्ध वैरे गुरुभिरनुज्ञातो ग्रमेधिनां धर्मान् अनुशिक्षमानो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायामुभयलक्षणम् कर्म समाम्नायां नातभियुञ्जन् आत्मजानम् आत्मसमानां शतं जनयमास। अथ भगवान् ऋषेव देव स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमान परदर्शित गुरुकुलवासलब्धवैरे गुरुर्भिरनुज्ञातो ग्रहमेधिनां धर्मान् अनुशिक्षमानो जयन्त्यामिन्द्रदत्तायामुभयलक्षणम् कर्म समाम्नायानभियुञ्जम् आत्मजानाम् आत्मसमानाम् शतं जनयमास। अतः भगवान् ऋषेव देव स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमान प्रदर्शित गुरुकुलवासलब्धवैरे गुरुविरनुज्ञातो ग्रहमेधिनां धर्मान् अनुशिक्षमानो जयन्त्यामिन्द्रदत्ताया वैलक्षणम् कर्म समाम्नायात्ना अभियुञ्जन् आत्मजानाम् आत्मसमानाम् शतम् जनयमास। शब्दार्थ इस प्रकार है, अथ तत्पश्चात ह निसंदेह भगवान ऋषेव देव स्व अपना वर्षम राज्य कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र अनुमन्यमान के रूप में स्वीकार करते हुए पारदर्शिता उदाहरण स्वरूप दिखाया गया गुरुकुलवास गुरुकुल में रहते हुए लब्ध प्राप्त करके वैरे वरदान गुरु भी गुरुओं से अनुज्ञात आदेशित होकर ग्रह मेधिनाम गृहस्थों के धर्मान कर्तव्य अनुशिक्षमान उदाहरण द्वारा शिक्षा प्रदत्त जयंत्याम अपनी पत्नी जयंती से इंद्रदत्तायाम भगवान इंद्र द्वारा प्रदत्त उभय लक्षणम दोनों प्रकार के कर्म कर्म समाम यानाम समाम शास्त्रों में वर्णित अभियुंजन करते हुए आत्मजानाम पुत्रों को आत्मसमानानाम अपने ही समान शतम 100 जनयाम आस उत्पन्न किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज नाभि के बद्रिकाश्रम प्रस्थान के पश्चात परम ईश ऋषभदेव ने अपने राज्यों को ही अपना कर्म क्षेत्र समझा, अतः उन्होंने सर्वप्रथम गुरुओं के निर्देश में ब्रह्मचर्य स्वीकार करके अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए गृहस्थ के कर्तव्यों की शिक्षा दी। वे गुरुकुल में वास करने भी गए। शिक्षा पूरी होने पर उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और तब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। उन्होंने जयंती नामक पत्नी ग्रहण की और उससे 100 पुत्र उत्पन्न किए जो उनके ही समान बलवान तथा योग्य थे। उनकी पत्नी जयंती स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा उन्हें भेंट में दी गई थी। ऋषभदेव तथा जयंती के श्रुति तथा स्मृति शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट अनुष्ठानों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार होने से ऋषभदेव को सांसारिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं था। जैसे कि भगवद्गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार का उद्देश्य भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के असुरी कार्यों को रोकना है। ईश्वर के अवतार लेने के यही दो प्रयोजन होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि उपदेश देने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वो व्यवहारिक जीवन बिताकर लोगों को दिखाए कि कार्य किस प्रकार करना चाहिए। अपनी आचारी भक्ति सिखाई मु सवारे, जब तक कोई उसी रूप से आचरण नहीं करता तब तक वह अन्य को शिक्षा नहीं दे सकता। ऋषभदेव आदर्श राजा थे और उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, यद्यपि वे पहले से ही शिक्षित थे। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, यद्यपि गुरुकुल में उनके सीखने के योग्य कुछ भी नहीं था, किंतु वे लोगों को यही शिक्षा देने के लिए वहां गए कि वैदिक गुरुओं से किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसके बाद में वह गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए और श्रुति स्मृति सम्मत वैदिक विधि से जीवन बिताने लगे। श्रील रूप गोस्वामी भक्तिरसामृत सिंधु 1.2.10 में स्कंद पुराण का निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पाते व कल्पते। मानव समाज को वैदिक साहित्य जैसे श्रुति तथा स्मृति से प्राप्त उपदेशों का पालन करना चाहिए। पांचरात्रिक विधि के अनुसार व्यवहारिक जीवन में भगवान की यह उपासना है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह दिव्य जीवन बिताकर अंत में भगवत धाम जाए। महाराज ऋषभदेव ने इन समस्त नियमों का कठोरता से पालन किया। वे आदर्श ग्रस्त बने रहे और उन्होंने अपने पुत्रों को आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की शिक्षा दी। उन्होंने जिस प्रकार पृथ्वी पर शासन किया और अवतार के रूप में अपना उद्देश्य पूरा किया, उससे ये कुछ एक उदाहरण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संसार सागरे मग्नम दीन मा करुणा निधे कर्मग्राग्रहितांग मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतोऽख्यायं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि श्रीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थ भवसागरे। मनोरथो मदीयं सफल सर्वता त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तव केशव। सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मद अज्ञानं विनाशय। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष देवेश नाथस्त्वयनो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुख शमनं तं नमामि हरि परम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आराध्य भगवान व्रजे सतनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गे नया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादुरो। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से और इन सभी वैष्णव के आशीर्वाद की याचना करता हूँ। वैसे ही परम पूज्य राधेश्याम प्रभु श्री गुरुचरण प्रभु प्रभु स्वामी प्रभु सर्वलक्षण प्रभु अंतर्दीप प्रभु महावीर प्रभु और सभी वैष्णव, बड़े बड़े वैष्णव जुगल किशोर प्रभु और बड़े बड़े वैष्णव है, अभी क्या किसको पीछे श्रीपाद सेवा प्रभु बैठे, दाऊ जिताय प्रभु है और गोपाल प्राण प्रभु है और कीर्ति कृष्ण प्रभु और तो माधव सेवा प्रभु, सुनार गौराम प्रभु, तो ये सब वैष्णव है कि ये लोगों से कि बहुत कुछ सीखा है, नाम प्रभु बैठे, तो हमें जीवन में वैष्णव जो है तो उनसे प्रेरणा मिलती है, तो उनसे आशीर्वाद भी लेने चाहिए। तो सबसे प्रेरणा के मेरे स्तोत्र रहे कि आप आपकी भाषा में बोलते हैं ना कुछ, कैरेक्टर इज लॉस्ट, हाँ तो वैसा ही है कि कैरेक्टर के अगर ये चारित्र्य के बारे में अगर पूरे ईश्वर में आप इस कौन ईश्वर में किसका नाम आता है तो ये आदरणीय राधेश्याम प्रभु का आता है। और हमें भी ये चारित्र बहुत अच्छा लगता है कि भले ही लोग बोले कि क्या है कि सब कुछ चलता है, लेकिन सब कुछ चलता नहीं है, तो ये चारित्र बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे मंदिर का जो नाम है चारित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सभी दुनिया विश्व में पूजनीय जो है तो वो चारित्र है और वो राधेश्याम प्रभु ने यहाँ बनाए रखा है और इसका आदर्श लोगों को दिखाया है। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई तो आदर्श दिखाने वाला चाहिए, तो प्रभु जी ने दिखाया। तो मैं प्रभु जी के सभी विनती करता हूँ कि वो आशीर्वाद दे कि मैं कुछ देखो अभी मेरी परिस्थिति ऐसी है कि क्या बोलते हैं उसको, मेरी कोई निजी तो अपनी पात्रता नहीं है, लेकिन शास्त्र में कुछ श्लोक आते हैं, कुछ ये आते हैं, असज्जन संगी संगात करोति दुस्साह्यम अपि साध्यम, दुस्साध्यम अपि साध्यम, कि जो साध्य होने लायक नहीं वो साध्य करते हैं। पुष्पाश्रया पुष्पाश्रय शंभु शिरो धीरूढ़ा पिपीलिका चुंबती चंद्रबिंबम। तो ये जो कोई अगर पुष्प ग्रह जो कोई चींटी है एक फूल के ऊपर बैठ जाए और वो फूल भगवान शिव जी के माथे पर चढ़ाया जाए, तो वो चींटी शिव जी के माथे पर जो चांद लगा है उसका भी चुंबन करती है। तो ये चींटी का कोई क्या, चींटी का कोई यहाँ प्रयास नहीं है, बस उसने क्या लिया है, आश्रय लिया है किसका, फूल का। वैसे ही आप लोगों का आश्रय लिया है, इसीलिए मेरी अपनी निजी पात्रता नहीं होने पर भी यहाँ इतने ऊंचे जगह पर बैठने को मिला है। तो ये बड़े ही गर्व की बात है मेरे लिए, लेकिन मुझे ये भी अफसोस है कि इसको व्यासासन कहते हैं, तो इस पे बैठने के लिए आदमी में वो जो चारित्र्य है, वो जो पवित्र है और आचार्यों के जो वचन है वो दोहराने की शक्ति होनी चाहिए। मेरे अंदर तो वो पात्रता नहीं है, लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप कुछ कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ शब्द इधर उधर हो जाएंगे कि मेरा जो उच्चारण शास्त्र अच्छा नहीं है, तो उच्चारण में कुछ हो सकता है, तो आप क्षमा करेंगे। और जैसे आपको अगर कुछ उदाहरण बताए तो सब पारस मणि जो होता है, पारस मणि को स्पर्श करते ही लोहा क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, और अमृत की बूंद मृत शरीर में भी डालने से वो जीवित हो जाता है, और सरस्वती के पास कोई जाए और सरस्वती की कृपा उस पर हो जाए तो वो आचाल बन जाता है, बोलता बन जाता है, मुँह गूंगा भी। और वैसे ही कोई ये जो कहते हैं सागर के सामने चषक सागर के सामने चषक और गरुड़ के सामने मशक, और ये काम जो है मशक यानी गरुड़ जी के सामने मशक, मशक यानी मच्छर, हाँ तो या और ये जो है और गज के सामने मुशक, गज हाथी के सामने चूहा ऐसा। तो ये जो है तो ऐसी मेरी पात्रता है आप लोगों के सामने, क्योंकि आप विद्वत है और जो भक्ति में विद्वान कौन है कि जो भक्ति में लगा है, नवविद भक्ति कर रहा है वो विद्वान है, और सब अविद्वानों के सामने आज मुझे ये जो अवसर मिला है, देखो, हमें कविता करने का आदत था पहले, अभी छूट गया है, लेकिन कुछ शब्द आ ही जाते हैं। तो शक्ल पे मत जाओ, अक्ल तो है ही नहीं। शक्ल पे मत जाओ, अक्ल तो है ही नहीं। आप जैसे विद्वानों के सामने नकल तो है। तो हम नकल कर रहे हैं आप जैसे विद्वानों की। तो ये मेरे लिए अभी कैसा है कि तो विषय जो है हमारा कुछ अलग है। तो ऐसा है कि आप, मैं नकल कर रहा हूँ आपकी। जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं तो बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाते चलाते और भी कुछ कर लेते हैं। तो वैसा मैंने कभी क्लास तो दिया नहीं है, तो मुझे अभी कैसा शुरू करना और क्या करना, ये बहुत तकलीफ की बात है। लेकिन तो भी कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं प्रभु, आप ऐसा बोलो कि सब इम्प्रेस हो जाए। और कुछ लोग बोले कि देखो संभाल के बोलो। हाँ, और कुछ लोग बोले कि देखो आपका नाम पहले बदनाम है, हाँ, तो आपका हर शब्द कोई कैच करेगा। और वो लोग मेल डालेंगे तो बोलेंगे देखो ये ऐसा बोलता है, तो आपको बहुत सतर्क रहना है। तो अभी मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। तो ऐसा है, तो भी कुछ लोगों के लिए जिन्होंने मुझे ऐसा सजेशन दिया, 8-9 लोग आए थे मेरे पास, तो कि प्रोजे आपका स्वाभाविक बोलो, तो उनको, उनके लिए भी थोड़ी एक लाइन सुना देते हैं। प्रभु जी ने तो शोला था जल बुझाऊं, शोला था जल बुझाऊं हवाएं मुझे न दो, शोला था जल बुझाऊं हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूं सदाए मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूं सदाए मुझे न दो। तो आप तो ज्ञानी है, अर्थ तो जान लेते हैं। और आज जो है तो ये परीक्षा की घड़ी है मेरी। अब इम्तिहान न तेज जुबा की है, अब इम्तिहान ये तेज जुबा की है और हम, इम्तिहान ये तेज जुबा की है और हम, जो अक्ज सामने है क्या अक्ल बड़ा है गम, क्या अक्ल है बड़ा गम। तो इसमें कुछ उर्दू के शब्द है, क्योंकि हम उस परभणी में जो बहुत मुस्लिम लोग रहते तो वहाँ सब उसी टेरिटरी में रह चुके हैं, तो उर्दू आती है भाषा में, तो ऐसे कुछ शब्द आएंगे, तो क्षमा कीजिए। तो आज का जो ये तात्पर्य में प्रभुपाद, बड़ी ही प्रभुपाद का जो शब्द है, तो आप मैं आपको, मुझे गर्व होता है जब भी मैं किसी के पास जाता हूँ तो प्रभुपाद के बारे में एक जो भी कोई शब्द बोलते हैं, तो क्योंकि प्रभुपाद का एक एक शब्द जो है ना, प्रभुपाद का एक एक शब्द एक एक श्लोक है। और ये मैंने, लोग बोलते क्या बैठे खाली मुंह डाले हुए बुक में, ग्रंथ में, पुस्तक में बुक डाले बैठे रहता है दिन भर। तो उसका मैं देखता हूँ कि प्रभुपाद का जो एक एक वाक्य है, प्रभुपाद बोलते हैं कहीं जगह पे बोलते हैं कि भगवान के सामने नृत्य करना, भगवान के सामने जोर जोर से हरे कृष्णा बोलना, हरे कृष्ण का कीर्तन करना, ये जो ये है कि यही सब दुनिया का उद्धार कर सकता है। और पद्म पुराण में ये श्लोक एज इट इज लिखा है, प्रभुपाद ने उसका एज इट इज यथारूप अनुवाद दिया है। और कहीं ऐसे प्रभुपाद के लेक्चर के वाक्य है, और कहीं ऐसे तात्पर्य में वह प्रभुपाद के वाक्य है कि यथारूप आपको श्लोक मिलेंगे। मैंने कई श्लोक, सैकड़ों श्लोक निकाल के रखे ऐसे कि प्रभुपाद जो बोल रहे हैं ना, कोई बोलेगा तुम ये प्रभुपाद कर रहे हो, तो उनको श्लोक भी दिखा सकते ये प्रभुपाद। कि प्रभुपाद के सामने जो ऑडियंस था तब जमाने में, वो श्लोक समझने में सक्षम नहीं था, तब प्रभुपाद ने उसका अनुवाद दिया। लेकिन प्रभुपाद ने हर अनुवाद के सामने ऐसा नहीं लिख सकते कि ये श्लोक यहाँ से आया है। तो ये हमारे ऊपर बड़ी ही कृपा है। और ये भक्त भी जो प्रभुपाद के वाक्य दोहराते हैं ना कि प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, तो ये सही में सच है कि प्रभुपाद ने जो कहा है ना वो शास्त्र ही कहा है। तो ऐसे ही शास्त्र कहने पर इधर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान का जो ये तात्पर्य बोल रहे हैं कि भगवान के जो अवतार के, जो भगवान के अवतार लेने के जो उद्देश्य है दो। तो इस आज हम कैसा देखेंगे, वो समय जितना मिलता है, तो इसमें पहले प्रभुपाद ने भगवान के अवतार के उद्देश्य बताए हैं, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को जो कहेगा अपने आचरण से दूसरे को सिखाओ ये बताया है। और उसके बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो श्रुति और स्मृति जो है, और पुराण और नारद पंचरात्र विधि, तो इसमें हमें पालन करना चाहिए। तो मेरा प्रयास रहेगा, तो मैंने ये सब जो पहले जो अवतार के उद्देश्य है वो भी है, और दूसरा है कि ये जो कैसा हमें अपने जीवन में आचरण करना चाहिए प्रचार के लिए, और उसके बाद ये पंचरात्र विधि क्या है। हमारे भक्ति वेदांत मीडिया में पंचरात्र विधि का पूरा ग्रंथ है, लेकिन वो डायक्रेटिक मार्क में है और खाली श्लोक है। तो उस श्लोक से मैंने कुछ श्लोक लाए हैं कि जो पंचरात्र विधि जो है एक्चुअली है क्या, तो पंचरात्र वो भी हम चर्चा करेंगे। तो शुरू में हम जाते हैं क्रम से, प्रभुपाद ने जो बोला है कि भगवान भक्तों की रक्षा करने आते हैं और जो अभक्तों है उनके असुरी कलापों को रोकने के लिए आते हैं। तो हमें सबको पता है कि शास्त्र में अनेक अनेक कथाएं आई है या इतिहास घटा है कि भगवान कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन अभी इस युग में आज के दिन में भगवान कैसी रक्षा कर रहे हमारी। तो एक श्लोक मुझे उधर समझ में लगा कि ये श्लोक भगवान हमारे रक्षा के लिए कैसा दिए है। भागवतम में जो उद्धव जो है ये 11वें स्कंद में 6 अध्याय में जो 44वां श्लोक है उसमें उद्धव जी भगवान से बोल रहे हैं कि देखो उद्धव जो है तो प्रत्यक्ष बृहस्पति के शिष्य है और इतने विद्वान है और वो भगवान के संबंधी भी है, भगवान के रिश्तेदार होने के कारण उनको ये सब की जरूरत नहीं, उनका उद्धार पहले ही हुआ है और शुद्ध भक्त है, तो भी वो हमारे लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए सब जीवात्मा के उद्धार के लिए वो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान की यहाँ दोनों भी की जीवात्मा का उद्धार और भगवान की यशोगान। तो भगवान के यशोगान में ये बोल रहे हैं कि त्वया उपभुक्त स्त्रग गंध वासो अलंकार चर्चिता उचिष्ट भोजनो दासा तव मायाम जय मही। तो बोल रहे कि इस कलयुग में हमें एक ही आधार है, क्या आधार है कि भगवान का जो महा उसमें वो भगवान की माला है। शुरू में क्या बोला है त्वया उपभुक्त स्त्रग माला, शुरू में माला बोला है, तो ये माला बहुत सारे प्रेम भक्तों का प्रेम रहता है और कितनी श्रद्धा है देखो भक्तों की। तो इनको ये जो शास्त्र ने बोला है उद्धव जी ने बोला है उसके ऊपर तो माला पहन लेते भक्त अपने अपने लेके, तो ये जो माला है उसके बाद गंध भगवान को अर्पित करते हैं हम, जो अत्तर है और फूल है जो भी अगरबत्ती है उसका सुगंध लेना, तो ये हमें माया से बस। तो उसके साथ ही वासो, वास यानी वस्त्र, वस्त्र जो भगवान के जो वस्त्र है, कई कई भक्त है तो हम जब नए आए थे तो नित्यानंद प्रभु की कॉपी लेने के लिए झगड़ा होता था उधर कुंजबेरी में, कौन लेगा, मैंने पहले नाम दिया था मैंने लिया है, इतना इतना टुकड़ा करके हम गले में बांधते थे हाथ में बांधते थे, इधर नहीं है वो तो उधर मिलता है कुंजबेरी में। तो नित्यानंद प्रभु की कॉपी जो वास है तो ये उस है नित्यानंद प्रभु की कॉपी जो कि कोई पहन लेता है शरीर पे तो उसका काम भाव चला जाता है। जैसे तो हमारा तो विश्वास है, हम भी बहुत बार वो प्रयास करते थे अभी इधर नहीं मिल रहा, तो इसीलिए हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्र पे। और अलंकार भगवान के गले में जो या हाथ में शरीर पे जो अलंकार है वो अपने शरीर पे धारण करने चाहिए। तो अपने अपना हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रभुपाद ने बोला सोने का अलंकार मत पहनाओ, कि सोने का अलंकार पहन लिए होते तो कोई हमें महाप्रसाद नहीं मिलता है ना। तो नकली अलंकार हम रोज लाते हैं भगवान को चढ़ा लेते हैं, दूसरे दिन महाप्रसाद बन जाता है तो सबको महाप्रसाद मिलता है, तो बड़ी कृपा है पुजारियों की जो हमें देते हैं ये सब अलंकार। और उसके साथ ही त्वया उच्चिष्ट भोजिनो दासः, तो ये दासों के लिए उच्चिष्ट महाप्रसाद के लिए लोग भक्त चुरा चुरा के खाते हैं है ना, तो सबसे बड़ा डाकू तो मैं था, बहुत प्रसाद खाया, आपको क्या बताए, ये पूरा शरीर महाप्रसाद से भरा है, तो इसीलिए मैं माया से बचता हूँ, लेकिन अभी 6 महीने से सब बंद कर दिया खाना। तो मुझे ना तो ये बात है कि लेकिन महाप्रसाद में जो भक्त, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ आज पकौड़ा है क्या क्या सब्जी है नहीं चाहिए मुझे, नहीं, अपने आप से महाप्रसाद अपने आप अपने पास आ जाए तो पूछना नहीं क्या चाहिए, जो भी है, कभी कभी कड़वा लगता है, कभी कभी बहुत नमकीन रहता है, तो उसको श्रद्धा से लेना चाहिए। और अगर श्रद्धा से कोई महाप्रसाद ले रहा है तो उसको चैलेंज नहीं, उसको कोई भी माया कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिह्वा के लिए ले रहा है ना, उसको बराबर लेके जाएगी जिह्वा कहां, माया के पास। तो ये जो है कि इस तरह से ये जो हमारा आप भगवान के भगवान इस कलयुग में भी आज के युग में हमें बचाते हैं, और दूसरा है कि भगवान अभी ये तो भक्त बोल रहे हैं, अभी भगवान भी बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपदंते माया मेताम तरंतिते। तो ये जो भगवान की माया है बड़ी ही दुस्तर है, तो कई सी दुस्तर है उसके बारे में हम इधर देखेंगे कि एक अभंग भी आया है तुकाराम महाराज का। तो ये जो माया है, तो माया से तैरने के लिए क्या है कि भगवान को भगवान की शरण लेनी है। तो क्या शरण का मतलब क्या है, अगर हम किसी के शरणागत है ना, तुम अब सब लोग तो बहुत सिनेमा देखे होंगे ना, कि सिनेमा नहीं देखा इस आदमी नहीं ये इस कलयुग में तो तो भगवान की कृपा से हमारे घर में टीवी नहीं था और अभी भी नहीं है। जब हम पीजी कर रहे थे, एमकॉम कर रहे थे, तब भी हमारे घर में लाइट नहीं थी। एक ब्रह्मचारी को घर में लेके गए तो पागल हो गया, बोला इतना तुम्हारे गांव में लाइट नहीं, ऐसा कैसा गांव है। मैं बोला ये तो मजा ही इस गांव की, सब 8 बजे 7 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं, क्या करेंगे। तो उस गांव में अभी भी बिजली का वही समस्या है, हमारे घर में तो अभी बिजली नहीं है, बहुत ये है। तो इस कारण हम ये क्या बोलते हैं, ये जो दूरदर्शन है ना, हम भगवत दर्शन ही इतना पता था हमें, दूरदर्शन पता नहीं था, है ना। तो बहुत बड़ी भगवान की देखो कृपा होती है, भगवान हर एक के ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन माया क्या करती है, माया हमें धीरे धीरे बुला लेती है, और माया का बुलाना किसको समझ में नहीं आता। तो ये दैवी, ये जो भगवान की शरण में जाना है, तो कैसे शरण में जाना है तो आगे हम बताएंगे एक अभंग में, लेकिन उसके पहले भगवान हमें भय से भी बचाते हैं। तो क्या है भय, जो है नेहा विक्रम नाश्योस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमश्च धर्मश्च त्रायते महतो भयात। महत यानी बड़े भय से, क्या स्वल्प। तो आप लोग बोलेंगे हाँ भक्ति थोड़ी ही करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। बहुत बार ये हमें समझ में आता है कि यार ठीक है ना, 16 माला कर दिए बस हो गया, नहीं है। देखो ये माला 16 माला कोई 16 माला ही करे और मन से करे ना, तो ये शरीर की व्याधि भी जो है ना वो चली जाती है, शरीर की बीमारी भी चली जाती है। और आपको मैं मेरा पर्सनल जो उसको साक्षात्कार नहीं बोलेंगे, लेकिन अनुभव बता रहा हूँ कि जब जब मैं भगवान से कुछ प्रार्थना किया है, लेकिन देखो भगवान से कभी ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि कोई भक्त के बारे में बोरी, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे वेद पुराण हमें ये बता रहे हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व जितने भी कोई है पापी तापी जैसा ही क्यों ना हो, कोई हमें शस्त्र लेके मारने भी क्यों ना आए, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इसको ऐसी बुद्धि दे कि आपका भक्त बन जाए या नम्र बन जाए। तो इसे हमेशा ये जो अब जब हम शास्त्र में लगे रहते हैं ना, तो शास्त्र हमें ये सब ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए भगवान ये स्वल्प स्वल्प यानी थोड़ा नहीं करना चाहिए, स्वल्प यानी कितना, हमारे जो 24 घंटे में हमें 2 घंटे हम जप करते हैं और 4 घंटे हमारे खाने में जाते हैं। तो आप बोलते हैं नहीं नहीं हम तो 15 मिनट में खाते हैं, लेकिन प्लेट धोना, उसको बनाना, उसके लिए लगना बड़ी मुश्किल है। पेट पालना सबसे बड़ा बिजनेस हो गया है इस दुनिया में, और उसने किसी को ये पेट जीवा ने किसी को भी नहीं छोड़ा, हमको हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा है। हमें कितना लगता है खाने में, आप सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे, अब जब किचन में जाके देखेंगे तो ये जो टनों में आता है और टनों में जाता है, तो इसको रोकना चाहिए। तो आप बोलेंगे बोलने में यहाँ बैठ के यहाँ बोलने यहाँ झूठ, सही में यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो पवित्र आसन है, यहाँ कपट्टी बात नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मेरा पर्सनल मैं प्रयोग कर रहा हूँ 6 महीने से बिना खाए, मीन्स कुछ फल मूल खा के बिना टेस्ट का खा के, तो कैसे जी पाते हैं क्या हम, तो ये मैं प्रयोग किया हूँ। तो मैंने देखा कि ये जब से मेरा प्रयोग हुआ था, नींद भी कम हो गई है और मन भी स्थिर हो गया है, और उसके साथ शरीर के जो गैस एसिडिटी बद्ध को जो जो बीमारी है ये बीमारी सब चली गई। नहीं तो कई डॉक्टर के कई दवाई ले ली मैंने, ये किडनी स्टोन ये वो, उसके लिए हजारों में पैसे खर्च हो गए, हेल्थ डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन ये काम नहीं किया। किसका जड़ था ये हमारा ज्यादा खाना, बहुत खाते हैं तो बहुत खाने में पचाने में शक्ति चली जाती है, लेकिन क्या करें, अभी ये जीवा भी है ऐसी, छोड़ती ही नहीं है ना। कि ये स्त्री जो शोभा, स्त्री रूप है ना, जीवा स्त्रीलिंगी है ना, तो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग हम पुरुष है तो इसका आकर्षण स्वाभाविक उस स्त्री के प्रति रहेगा, लेकिन देखो ये नहीं होना चाहिए आकर्षण, क्योंकि एक तो जिंदगी मिली है वो भी कितने साल की, 60 साल की, और यहाँ बैठे सभी लोग हैं ना 40 के आसपास है, अब बस 20 साल बचे हैं, उसके लिए भी क्यों इतना माया के प्रति जाने का। तो ये ऐसे भगवान ये स्वल्प नहीं करना चाहिए, भाई से हमें बचना है तो स्वल्प नहीं, थोड़ा ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि है ना, तो आपको तो अभी आप विद्वान है, वो कुछ ज़्यादा एक उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तो संकट से किसको, संकट से प्रहलाद महाराज को बचाया भगवान ने, और द्रौपदी और पांडवों को बचाई, ये कथा आप सबको पता है। और उसके साथ भी भगवान जो है, तो समय हो गया क्या अभी है, तो इनको तो ये तो पता है कि व्याधि, ये जो बीमारी है ना, बीमारी से भगवान कैसे बचाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का आपको उदाहरण पता है कि जब सनातन गोस्वामी को ये त्वचा रोग हो गया था, झारखंड से जब आए थे, तो पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, तो भगवान के कृपा से क्षण में चला गया। तो भगवान इस युग में भी हमें ये त्वचा, और बोलेंगे वो तो बड़ी लंबी बात है, आज का क्या है, आज तो अब चरणामृत हम रोज लेते हैं, और चरणामृत लेते लेते हम श्लोक बोलते हैं, क्या श्लोक बोलते हैं हम, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम। तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम विष्णु पाद दोगम पित्वा पुनर्जन्म नविद्यते। तब फिर से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा, अगर ये इसके लिए भी श्रद्धा चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो ये उन्होंने कहा है तो ये श्रद्धा बढ़ जाती है। शास्त्र जब हमें, जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है कि भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम थोलम, और जैसे कि भगवान का कोई भी वाक्य जो श्लोक है हम सुनते हैं तो श्रद्धा बढ़ती है, वैसे ही श्रद्धा इसमें बढ़ेगी। तो इसके लिए जो ये हमारी आसक्ति है ना, तो इसके लिए बहुत ही, अभी देखो इसमें तो मुझे भक्तिनोद ठाकुर का जो एकांतिका भक्त है उसके बारे में एक मैं पढ़ के दिखाने वाला था, लेकिन समय तो इतना भाग रहा है, क्या करें अभी। तो ये तुकाराम महाराज बोलते हैं कि जो हमारी, हम क्यों भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होते, भगवान बोल रहे कि मामेव अप्रपदन्ते, मुझे ही शरण आओ, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हम, तो उसका कारण है माँ, ये तुकाराम महाराज बहुत अच्छी बोल रहे, माँ आकड़े मुठी धरिले फुटाने गुंतले ते ते थे हाथ ते थे, तर त्या दुसरा काय तो तयाचा लेखा व अन्याय ही तनेने काया पुलेते सुके नलिकेसी गोविले पाय विसरो नि जाय पक्ष दोनी तुका मने ऐसे पशु जीव न चले उपाव काही तेथे। तो हमारी स्थिति जो ऐसी है, आज आप बोल रहे कि नहीं नहीं इसके कारण मेरा भक्ति नहीं हो रहा, उसके कारण नहीं भक्ति हो रहा, ये करने की ये करना पड़ेगा, उसका कारण तुकाराम महाराज इधर बता रहे, माकड़े मुठी धरीले फुटाने, जो बंदर है ना हाथ में क्या पकड़ता है, फुटाना पकड़ता है, और ये फुटाना पकड़ना ही उसका बंधन का कारक है, और वो जो आता है पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है। अगर उन्हें फुटानी छोड़ दिए, ये खाने का छोड़ दिया, जीवा का लालसा छोड़ दिया, तो मुक्त है, लेकिन यही जीवा के कारण। और जीवा उपदेश अमृत में बहुत ही अच्छा श्लोक बताया कि एक ही लाइन में आता है, क्या जीवा बेली और जेनेटल, तो ये जेनेटल तकलीफ देगा आपको, कब तकलीफ देगा, इधर से, तो इधर से देखो आपको कौन सा द्वार किवाड़ कर बंद करना है, शत्रु आ रहा है तो शत्रु आने के लिए, शत्रु कहां से आ रहा है, वो द्वार को बंद कर देना चाहिए। और उसके बाद बोले सुके नली, ये शुक न्याय बोलते हैं इसको, शुक नली का न्याय, ये शुक नली का न्याय क्या है, तो ये जो नली दिख रही है ना आपको, ऐसी एक नली रहती है, तो ये जो शुक जो है उसको मिर्ची अच्छी लगती है, पोपट को, ब्राह्मण को मिर्ची प्यारी ऐसे बोलते हैं, ये क्या लोग बोलते हैं, तो ये जो शुक है तो क्या करता है, वो जो पंछी पकड़ने वाला एक पेड़ है कि पेड़ की एक टहनी ऐसी कट देता है, उसमें एक नली डाल देता है और उसके सामने मिर्ची लटका देता है, ये पोपट जो है, ये पंछी है, शुक है, वो आके बैठ जाता है इसके ऊपर, जैसे ही बैठ जाता है नली बहुत चिकनी होने के कारण ऐसी घूम जाती, तो वो क्या है, वो गिर जाएगा, इसीलिए बहुत ऐसा सख्त पकड़ लेता है किसको, वो नली को, और नली को सख्त पकड़ लेता है और उसको लगता है मैं गिर जाऊंगा, तो ये जो पंछी पकड़ने वाला है उसको पकड़ लेता है। लेकिन वो भूल जाता है, क्या भूल जाता है, मेरे पास क्या है, पंख, ये भूल जाता है। तो यही हमारे पास, हमारा यही सबसे, क्योंकि लोग बहुत बार हम बोलते हैं प्रभु जी बहुत लस्ट सता रहा है, और बहुत काम की वासना आ रही, और काम आ रहा है कितना दिन आएगा, कितना घंटा आएगा, समझो रात में आपको कुछ बुरे विचार आ रहे कितने देर आएंगे, मावा लेके बैठो ना। अरे मैं भी आपके जैसा बद्ध जीव आत्मा हूं, मेरे भी मन में वो ऐसे है, तो हम जल्दी क्या करते हैं, माला लेते, रात 1 बजे 2 बजे माला लेने का, और या भी हम बोलेंगे दिल से तो नहीं निकल रहा है लेकिन मुंह से तो निकलेगा ना, मुंह से निकालो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम निकालते रहो मुंह से। और जब मुंह से निकालेंगे ना हरिनाम है, देखो कोई कुछ भी बोले, जैसा कोई भी बीज लो जमीन में गाड़ देते ना, डाल देते, तो उसको पानी का सिंचाई करेंगे तो वो उगड़ेगा, भरे उल्टा गिरा है, वैसा आपके मुंह से कैसे भाव हो न हो, आपके मुंह से जब हरिनाम निकलते जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा आपकी काम वासना चली जाएगी, मेरा अनुभव है, मुझे बाकी का पता नहीं है। तो ये काम इसके लिए हमें प्रभुपाद ने दिया है, ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, और एक नहीं है, अरे सब सब जो ये दूषण जो है ना, और ये तुकाराम महाराज भी बोलते एका हरिनामा खेरीच या स्वैर संचाली मनाला दुसऱ्या कशाने व्यसन घालता येत नाही। या हरिनाम के सिवा हम अपने मन को किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं कर सकते। आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल रहने दो या आर्ट ऑफ माइंड मैनेजमेंट रहने दो, ये कुछ नहीं काम करेगा। ये बहुत ये है कि हरिनाम ही इसको जो है कि नियंत्रित करेगा हमारे मन को। इसीलिए जो कुछ भी विचार आने दो, पैसे का विचार आने दो, कुछ भी आने दो, माला लेके बैठो 1 घंटा 2 घंटा, किसी के अंदर ज्यादा बैठा है तो वो भी चला जाएगा, कब, वो जो अगर हरि नाम का सहारा लेगा तो इसीलिए ये जो ये हमारे जो पंख क्या है, यही हथियार है हमारे। आगे तो बहुत अच्छा अच्छा बताया इधर, लेकिन क्या करें अभी, तो रुक जाते, समय तो हो चुका है, तो जाते जाते ये आपको और एक कविता का एक लाइन सुना देते हैं, क्या भी स्वभाव हो गया, क्या करें। तो ज्ञान वैराग्य के शिवा भक्ति पे, देखो जरा गैर गौर से सुनिए, ज्ञान वैराग्य के शिवा भक्ति पे दिल में अगर मगरूर होगी, ज्ञान वैराग्य के शिवा भक्ति पे दिल में अगर मगरूरी होगी, अकल के बंदे गोलोक के जगह तेरी मंजिल जन्नत होगी, अकल के बंदे गोलोक के जगह तेरी मंजिल जन्नत होगी। ये बस ये प्रभुपाद ने कहा है, हमें उसको हमारी भाषा में उसको ये किया है। तो ये है कि भक्ति जो है आप सब जानते हैं, भक्ति के कौन पुत्र है, हाँ, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो किसी माता को हम बुला रहे हैं हमारे घर में पूजा, ये मातृ पूजा होती है, आपके इधर होती है कि नहीं, हमारे इधर होती है कि जिस माँ को 2 से ज़्यादा बच्चे उसकी पूजा की जाती है, तो मातृ पूजा होती है, तो एक दिन रहता है मातृ पूजा का, तो मातृ पूजा में माँ को बुलाते हैं जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे और उसकी पूजा करते हैं। अगर वो माता को हम बुलाए उनके बच्चे को नहीं आने देंगे तो माता प्रसन्न होगी क्या, और हमारा उद्देश्य क्या है, माता को प्रसन्न करना है और भक्ति देवी को प्रसन्न करना है, तो हमें क्या उसके बच्चों को भी बुलाना चाहिए कि नहीं, और उसके बच्चे क्या है, और ज्ञान वैराग्य। तो इधर बोला है ज्ञान वैराग्य के सिवा भक्ति पे दिल में अगर, हमारे दिल में अगर हम भक्ति लेना चाहते हैं और वो नहीं है, मगरूरी यानी उनके खिलाफ ज्ञान वैराग्य के प्रति हमारे मन में रोष है, तो भक्ति प्रसन्न नहीं होगी। तो अगर क्या बोला है, अगर अकल के बंदे गोलक के जगह तेरी मंजिल जन्नत होगी, तो प्रभुपाद ने बोला है कि तुम कहाँ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाओगे, क्यों, अगर भक्ति दिल में नहीं है तो हमें स्वर्ग में तो नहीं जाना है, हमें गोलोक जाना है। तो इसीलिए हमारी आकल नहीं लगानी चाहिए, हमारा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो आचार्यों ने बोला है ना उसको पढ़ना चाहिए, उसको सुनना चाहिए और उसके पद पर जाना चाहिए। तो बहुत कुछ भक्ति विनोद ठाकुर तो बहुत कुछ अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अभी क्या करें, समय हो चुका है। तो एकांत के भक्ति और श्रुति जब देखेंगे, कभी मिलेगा तो यह स्मृति क्या है और नारद पंचरात्रि विधि में तो बहुत है, आप देखेंगे तो नारद पंचरात्रि विधि का सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे, बोले कि क्या शिव जी का भक्ति है, ऐसा शिव जी का भक्ति है, शिव जी रोज भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का। इधर हम कभी देखेंगे, आपको समय है तो आप भक्ति वेदांत मीडिया में अपने इधर जो पंचरात्रि विधि है उसमें पढ़े, क्या वर्णन किया है भगवान की लीला का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी कुछ गलती है तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
सज्जन सज्जन।